તારીખ 4/12/1993 શ્રી સમયસર ગાથા 166 તથા 168 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 157.
गाथा 166 का भावार्थ,
166 का भावार्थ, 164
का गाथा में यह विषय चला कि ज्ञानी को आश्रय का अभाव है, ज्ञानी के आश्रय नहीं होता है, ऐसा ज्ञानी का अंतरंग स्वरूप दिखाया। बाह्य में तो विरत सम्यक दृष्टि जीव को कोई चिन्ह नहीं होता, कोई लक्षण नहीं होता कि जिस लक्षण से वो ज्ञानी ही है ऐसा कहा जाए या ऐसा माना जाए। अंतरंग लक्षण से ही, अंतरंग स्वरूप से ही ज्ञानी पहचाना जाता है। तो अंतरंग में क्या होता है कि ज्ञानी अपने स्वरूप को अनुभव करता है और दूसरे पदार्थ को मात्र ज्ञाता हो करके जानते हैं, अकर्तृत्व भाव रूप परिणमन करते हैं। ये बात टीका में चली, भावार्थ में सादी भाषा में पंडित जी कहते हैं ज्ञानी के अज्ञान भाव नहीं होते। क्या? ज्ञानी को अज्ञान भाव नहीं होता। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप को मैं अंतर्मुख होकर के अनुभवन करता हूँ और मेरा अस्तित्व त्रिकाल ऐसा है, ऐसा उनको ज्ञान है और बाहर में किसी भी प्रकार का व्यामोह नहीं है। कोई भी पदार्थ सुख का कारण दुख का कारण उसको भाषित नहीं होते। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, अन्य सब ज्ञेय मात्र है, बस मैं मात्र ज्ञान, अन्य सब ज्ञेय मात्र है, ऐसा भाव ज्ञान भाव है। और परद्रव्य और पुण्य आदि में सुख बुद्धि होना, आधार बुद्धि होना, एकत्व बुद्धि होना वो अज्ञानमय भाव है, ऐसा अज्ञानमय भाव ज्ञानी को नहीं होता है। और अज्ञानमय भाव न होने से अज्ञानमय राग द्वेष मोह अर्थात आश्रव नहीं होते हैं। अज्ञानमय भाव नहीं होने से अज्ञानमय राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष है लेकिन अज्ञानमय राग द्वेष नहीं है। ये राग द्वेष करने लायक है, कर्तृत्व है, उसमें नहीं रहता, करने लायक मान करके कर्तृत्व नहीं होता। उसको कैसे जानते हैं वो कहेंगे, उसको तो रोगवत जानते हैं और मिटाना चाहते हैं।
अज्ञानमयता खत्म हो गई,
तो ज्ञानी को पहचाने कि उसको ज्ञान है या नहीं है, बस उतना देखना है। और वो भी इनके परिणति से देखना है, भाषा ज्ञान से या क्षोभसम ज्ञान से देखना नहीं है। इसलिए वो बात थोड़ी सूक्ष्म पड़ती है और ये सिर्फ योग्यता का विषय बन सकती है, बुद्धि का विषय नहीं बन सकती है। तो उतनी योग्यता हो, उन्नाण में जाने की योग्यता उतनी हुए और उनको प्रतीति आवे। क्या आवे? प्रतीति आवे तो इनके वचन पर भी प्रतीति आवे। जैसे भगवान है वो तो परिपूर्ण वितराग है, उनको तो कोई राग की क्रिया नहीं है, लेकिन इनके वचन पर भी प्रतीति कहाँ आती है? तो ज्ञानी के तो बाहर में प्रवृत्ति राग द्वेष चारित्र मोह के दिखते हैं, उनके वचन पर कैसे प्रवृत्ति आई प्रतीति आएगी? कि मूल जो स्वभाव दशा है, ये मूल दशा का परिचय हो तो परिचय से प्रतीति आती है और परिचय से पहचान आती है। बिना परिचय ये हो सकता नहीं है।
जिनेंद्र भगवान को भी जानते हैं?
नहीं। जिनेंद्र भगवान को जाने तो ज्ञानी को जाने, ज्ञानी को जाने तो जिनेंद्र भगवान को जाने, और तो फिर अपने आत्मा को भी जाने। ये सब लिंक है, श्रृंखला है पूरी। एक को जाने तो निवेड़ा आ जाता है, और जिनेंद्र तो सजीवन मूर्ति बार बार मिलते नहीं, जबकि ज्ञानी तो सजीवन मूर्ति बार बार मिल सकते हैं, लेकिन बाह्य दृष्टि होने से उनके बाह्य परिणाम और बाह्य प्रवृत्ति को ही ज्ञानी मानते हुए उनको विश्वास आता नहीं है, ये हालत हो जाती है। कोई प्रत्यक्ष कारण और परोक्ष कारण को प्राप्त करके सर्वज्ञ वितराग तो भी को भी सम्यक रूप से जाना जाए तो इसका फल बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सर्वज्ञ को जानो या सम्यक दृष्टि को जानो, आपको जो जानना है वो तो उनकी सम्यक दशा को जानने का है। चीज तो वही थी, पहचानने में तो वही चीज रही जो दोनों जगह है। अज्ञानमय भाव न होने से अज्ञानमय ऐसे राग द्वेष मोह नहीं है, अर्थात ऐसा आश्रव भी नहीं है। जो आश्रव बंद अनंत संसार का कारण होवे ऐसा ज्ञानी को होता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का इसका परिणमन नहीं है। और शुद्ध परिणमन में भी वो निमित्त तत्व नहीं है कि अनंत संसार का कारण बन जाए, ऐसा नहीं बनता।
बिना लक्ष्य के जाना जा सकता है? बिना लक्ष्य के जाना जा सकता है? ये लक्ष्य तो
होना ही चाहिए, पूर्णता का लक्ष्य तो होना ही चाहिए। इसके पहले कोई ज्ञानी को पहचान ले ऐसा भी नहीं बनता। ऐसी बात है, क्योंकि मेल कहाँ करेगा? सब बात का भीतर में कोई मेल तो करना पड़ेगा ना, कैसे पहचानेगा? ऐसी बात है। और आश्रव न होने से बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण है, ये बात है, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण है और सारा समय सार इस पर लिखा है। ज्ञानी का स्वरूप दर्शाने के लिए तो सारा समय सार लिखा है, और बहुत ज्ञानियों ने और बहुत आचार्यों ने ये बात कही है। क्यों कही? कि जैसे कैसे भी योग्यता पा करके ज्ञानी को पहचाने, बिना पहचान इनके प्रति भक्ति प्रेम रूप दशा नहीं आएगी। क्या कल थोड़ा रात को नया मुद्दा मिल गया, बहुत प्रैक्टिकल बात है। 263 नंबर का पत्र है, खीमजी देव जी पर लिखा हुआ है, तो उसमें वो लिखा, भक्ति शब्द अकेला नहीं लिया। क्या बहुत संक्षेप के अल्प शब्द में, बहुत अल्प शब्द में कहने जितना ही मेरे पास समय है, समय मेरे पास ज्यादा लिखने का नहीं है, ऐसा कहता है। ये पुष्कर लिखा है, वो ये बात है कि जैसो जैसो आपकी ज्ञान की जिज्ञासा है, ज्ञान प्राप्ति की भावना है, वैसी भक्ति की नहीं है। भक्ति प्रेम रूप बिना, भक्ति बिना नहीं लिखा,
भक्ति प्रेम
रूप बिना ज्ञान शून्य ही है। ज्ञान जानने जानने के जानना मिल गया इसलिए ज्ञान हो गया, ऐसा
नहीं है।
परम प्रेम आता है, सत्पुरुष के प्रति, सद्गुरु के प्रति परम प्रेम आता है, भक्ति साथ प्रेम आता है, अकेली भक्ति नहीं आती, अकेली भक्ति है वो ओक संज्ञा वाली है, और सही पहचान पूर्वक की भक्ति है उसमें प्रेम की उत्पत्ति परम स्नेह हो जाता है। कैसा हो जाता है? परम स्नेह हो जाता है। तो फिर ऐसा ज्ञान को प्राप्त करना, तो फिर वो ज्ञान शून्य है, तो ऐसा शून्य ज्ञान को प्राप्त करके तुम क्या करोगे? ज्ञानी है ही नहीं, वो तो शून्य है। हाँ, उसको उतना प्रेम आता है, उतना प्रेम आता है कि जगत के किसी पदार्थ प्रति उतना प्रेम नहीं होता है। हाँ, सब परिणमन जान सकता है। इसके बिना उसका परिणमन को कैसे जानेगा? यही कारण है जानने का। छह शब्दों में क्या लिया है? वही शब्द लिया है, यहाँ एलोबरेट अपने नहीं किया था, ये बात तो वही लिया है। कल थोड़ा ध्यान गया, ये शब्द का बार बार प्रयोग करते, जैसे श्री सुभाग प्रेम समाधि में झूलते हैं। क्या लिखा है? भक्ति समाधि नहीं लिया, प्रेम समाधि। इसको हमारे प्रति कितना प्रेम है कह नहीं सकते। सत्संग जीव को बहुत बार प्राप्त हुआ है फिर भी सफल नहीं हुआ है, ऐसा वीतराग ने, श्री वीतराग ने कहा है, क्योंकि कुछ सत्संग को पहचान करके, सत्संग मैंने सत्संग में आए हुए सत्पुरुष को पहचान करके हमारे जीव ने उसको परम हितकारी नहीं जाना। थोड़ा लाभ का कारण है, लेकिन दूसरा भी लाभ तो है ना, वो छोड़ करके थोड़ा इधर भी लाभ लेवे, थोड़ा इधर भी लाभ लेवे। परम परम हितकारी नहीं जाना और परम स्नेह से उपासना नहीं की। देखो स्नेह शब्द क्या लिया, परम हितकारी नहीं जाना तो दूसरी बात क्यों लिखी? परम स्नेह से, परम प्रेम से उपासना नहीं की, इसलिए प्राप्त होने पर भी अप्राप्त फलवान हुए, ऐसे परिणामों से, ऐसी संज्ञा से उस सत्संग के प्रसंग का विसर्जन कर दिया है। वो पूजा का विसर्जन करते हैं ना, विसर्जन कर दिया है, समाप्त कर दिया।
हमारे
हमारे अनंत बार ऐसा हुआ है। अभी आया थोड़ा सत्संग ना प्रसंग चाले है। स्नेह शब्द हाँ, ये थोड़ा भीतर में तलाश करने योग्य है कि हमको बहुमान आता है तो प्रेम आया था, बहुमान आया था तो साथ में प्रेम आया था। तो प्रेम का लक्षण क्या है? कि वो उसका वियोग है वो उसको पुसाता नहीं है, अपना बस नहीं चले दूसरी बात है, लेकिन उनको वियोग पुसाता नहीं है। देखो ना, सोगानी जी ज्ञानी हो गए थे, लेकिन कलकत्ते में चिट्ठी लिखते लिखते क्या लिखते थे कि सत्संग गुरुदेव का नहीं मिल रहा है तो इतनी वियोग की वेदना चलती है कि लिखते लिखते आंख में से गरम आंसू निकल जाते हैं, गरम गरम आंसू निकलते हैं, ऐसा लिखते थे। ऐसी वेदना लगे तब तो प्रेम है, वियोग की वेदना नहीं है तो प्रेम नहीं है, क्योंकि संयोग में तो मालूम नहीं पड़ता कि हम तो बहुमान करते हैं गुरुदेव का, बहुत किया हमने तो, ऐसा समर्पण किया, ऐसा किया, आहार दान दिया, वो दिया, वो दिया, वो किया, लेकिन वियोग में क्या तेरी दशा हुई? वियोग में जो दशा वेदना की नहीं आवे तो प्रेम था नहीं। तो वो भक्ति तो अनंत अनंत बार ऐसे की है, ऐसी भक्ति तूने की, ऐसी तो तूने अनंत बार वो भक्ति तो किया ही है।
की आई तो प्रेम कहा
है,
गिनती की तो प्रेम कहा ना, किया ये किया वो,
हाँ वो तो प्रेम है ही नहीं, वो तो दुकानदारी हो गई, व्यापार हो गया, हमने उतना किया है, उतना दिया है, उतना समर्पण कर दिया था। कोई माँ अपने बेटे के लिए वो गिनती करती है, मैंने खिलाया था, मैंने पिलाया था, मैंने स्नान कराया था, कपड़े पहनाए थे, हाँ कोई गिनती करती है क्या? वो गिनती करता है, उसको प्रेम नहीं है, प्रेम है वो गिनती कर नहीं सकते, क्योंकि वो सब भिन्नता हो गई, अपनत्व नहीं रहा, वो पराया हो गया, जहाँ गिनती हुई वहां पराया हो गया।
प्रेम भक्ति संभव है,
ओघ भक्ति होती है, वो प्रेम बिना के होती है, इसलिए तो भक्ति का एक आर्टिकल लिखा है, प्रेम भक्ति, भक्ति ओघ भक्ति, प्रेम भक्ति मार्ग भक्ति, सब बात लिया है अलग अलग प्रकार के।
रहमन ये घर प्रेम का खाला का घर है, शीश उतार भूमि रहे, पे पैसे घर माई,
ठीक बात है, ऐसी बात होती है, वो सर्वार्पण बुद्धि वो भी प्रेमी प्रेमी प्रसिद्ध करता है, सही बात है। एक दफे तो सत्पुरुष के प्रति भले ही राग बढ़े, वो लिखते हैं कि ये कैसा आश्चर्य है कि जगत को सत्पुरुष का मोह ही नहीं हुआ, मोह शब्द लिया है बात, मोह नहीं हुआ, ये कैसा आश्चर्य है, और पदार्थ का तो मोह होता है, फिर सत्पुरुष मिले तो इसका मोह नहीं हुआ, इसका हमको आश्चर्य लगता है कि इसका मोह क्यों नहीं हुआ। एक दफे तो दिशा बदलनी पड़ेगी, राग मोह है उसका विषय बदलना पड़ेगा,
कितना मोह कर सकता है कर, कितना मोह कर सकता है,
हाँ ऐसी बात है।
इसी प्रकार से दूसरे पद में उन्होंने कबीरदास ने कहा कि शीश उतार करके जमीन पर रखिए, उस पर खुद खड़ा हो, उसको प्रेम करें, कई लोग क्या
उसमें मतलब उसमें कोई मर्यादा ही नहीं है, उसमें कोई मर्यादा रहती नहीं है, राग मात्र राग है, बात तो ऐसी ही है, लेकिन हर स्टेज में अलग अलग स्टेज में अलग अलग बात आती है।
हाँ
अब जो है वो पहचान कैसे हुए, कैसी योग्यता हुए तो पहचान हुए, वो बात चलती है अभी, इसके पहला राग आग है ऐसा जानेगा लेकिन ऐसा लगेगा नहीं, तीव्र राग करेगा तो आग नहीं लगेगा, मंद राग में तो आग कहाँ से लगेगी, आश्रव ऐसे आश्रव न होने से नवीन बंध नहीं होता, ज्ञानी को नवीन बंध नहीं होता, इस प्रकार ज्ञानी सदा ही अकर्ता होने से नवीन कर्म नहीं बांधता, वो नया कर्म बांधता नहीं, छोड़ता है हर समय, वो पुराने कर्म को छोड़ता है, नए कर्म बांधते नहीं है, और जो पूर्वबद्ध कर्म सत्ता में विद्यमान है उनका मात्र नाता ही रहता है, पर चीज है मेरे नुकसान कारक है इतना मैं बंधा हुआ हूं, वो बात भी उसको नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि के भी देखो किसकी बात लिया, मुनि की नहीं लिया, अविरत सम्यक दृष्टि के भी ऐसी बात आती है ना, तो दूसरे लोग ऐसे ले ले, ये बात मुनि की लेना, ये बात चतुर्थ गुण स्थान वाले की नहीं लेना, ऐसी निर्जरा की बात हो तो वो मुनि के लेना, निर्जरा अधिकार भी मुनि के लिए लिखा है, ऐसा करते हैं, कहते हैं स्पष्टीकरण देते हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि के भी अज्ञानमय राग द्वेष मोह नहीं होता, जब से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तब से उनको अज्ञानमय राग द्वेष मोह नहीं होता, जो मिथ्यात्व सहित रागादि होता है वही अज्ञान के पक्ष में माना जाता है। मिथ्यात्व सहित का राग है वो अज्ञान का विभाग में जाता है। सम्यक्त्व सहित रागादिक अज्ञान के पक्ष में नहीं है। जो सम्यक्त्व सहित है वो राग हुए तो भी वो अज्ञान के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान क्या है कि ये राग मुझे लाभ का कारण नहीं है, इसलिए उसको राग का राग नहीं रहता। क्या
राग का राग नहीं,
राग का राग उसको राग है लेकिन राग का राग नहीं है, राग की रुचि नहीं है। सम्यक दृष्टि के सदा ज्ञानमय परिणमन ही होता है। सम्यक दृष्टि को सदा ज्ञानमय परिणमन होता है। सुदोपयोग होता है तब ज्ञानमय परिणमन, और दुकान पर जाता है तो अज्ञानमय परिणमन ऐसा नहीं होता है। सदा लिया है, सदा ज्ञानमय परिणमन होता ही होता है, ऐसा लिखा ही होता है। उसको चारित्र मोह के उदय की बलवत्ता से जो रागादि होता है उसका स्वामित्व उसके नहीं है। जो भी होता है रागादि चारित्र मोह के उदय की बलवत्ता से, मैंने चारित्र का तीव्र उदय आता है और अस्थिरता से परिणाम उसमें आंशिक रूप में लगते हैं तो भी भिन्नत्व रख करके लगते हैं। भिन्नत्व छूट करके एकत्व हो जाए ऐसा तो नहीं लगता है। बलवत्ता से या बलजोरी से लगता है। रागादि होता है उसका स्वामित्व उसके नहीं है। एक दृष्टांत लिया है कृपाल देव ने कि जैसे कोई समुद्र के तूफान में किसी की नाव फंस गई, होड़ी है नाव है और समुद्र के तूफान में फंस गई, बहुत झंझावात है, हवा बहुत तेज से चलती है। अब उनको किनारा दिखता है कि इधर माइल दो माइल पर किनारा तो है, उधर मुझे जाना है। अगर किनारे पे मैं नाव को बांध दूं तो फिर डूबने का सवाल नहीं होता। तो हलेसा है, पानी को कांपता है, कहाँ जाने के लिए, किनारे जाने के लिए। फिर तूफान इतना तेज से आता है कि कभी कभी इसकी नाव थोड़ी धक्का लग के पीछे भी, वो 10-20 कदम आगे गया तो 2-3 कदम फिर पीछे भी चला जाता है। कभी जब वो पीछे इसकी नाव चलती है धक्का से, पवन के धक्का से, तब भी उसका प्रयत्न क्या रहता है कि किनारे जाने का रहेगा। ऐसे सम्यक दृष्टि को चारित्र मोह का उदय आता है लेकिन उसका पुरुषार्थ जो है वो एक ही दिशा का रहता है। दिशा पुरुषार्थ की दिशा कभी बदलती नहीं है। हाँ, पुरुषार्थ का जोर से उदय का जोर ज्यादा हो सकता है, इसलिए ये कह सकते हैं कि इधर पुरुषार्थ की कमी है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं है या उल्टा पुरुषार्थ है ऐसा कभी नहीं होता है। ओ, छोटा काम करे वहां से नाप करना है क्या, क्या करना है नाप, क्या से करना, नाप क्या कहां से करना है, उसकी अंतरंग परिणति से करना है या सच्चा खोटा काम किया इससे करना है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि व्यवहार में कभी खोटा करे ही नहीं, जिंदगी भर नहीं करे, तो क्या वो सम्यक दृष्टि हो गया क्या?
नहीं।
तो फिर किसने खोटा कर लिया तो इसलिए वो मिथ्या दृष्टि हो गया क्या? जैसे रामचंद्र जी थे तो सीता जी को बिना अपराध जंगल में भेज दिया, क्या वो सीता जी के प्रति सरासर अन्याय नहीं था क्या? उसमें रामचंद्र जी की कौन सी नीति थी?
अन्याय था।
नीति राजकाज चलाने की अवश्य थी। कौन सी नीति थी कि राजकाज चलाने की? या समाज में कोई भी अनुचित कहावत नहीं रह जाए या कोई अनुचित बात नहीं रह जाए तो समाज का दंड सीता को, सीता जी को भोगना पड़े, वो न्याय कहाँ का?
लोक संज्ञा हुई
है? लोक संज्ञा नहीं थी, ज्ञानी थे। देखिए ज्ञानी को लोक का समाज का विकल्प आवे, और समाज के व्यवहार अनुकूल रहने के लिए दूसरे ज्ञानी के प्रति कभी अन्याय भी हो जाए तो हो जाए। लेकिन फिर भी न उनको लोक संज्ञा है, न उनको अनीति और अन्याय से कोई उनको दोष है। क्या समर्थ को नहीं दोष घुसाई, क्या कहा है तुलसीदास ने, कहा कि समर्थ को नहीं दोष घुसाई। वो समर्थ है, ऐसे भीतर में उतने समर्थ है अपने आत्म कार्य में, तो वो दोष इसका गिनने में आता नहीं है, ऐसे बात है। एक घर का लड़का है, सालाना 5-10 लाख की कमाई करके लाता है घर में पैसा। अगर वो 5-10 हजार कहीं खर्च कर दे तो इसके लिए कोई उसको मना करता है क्या?
नहीं।
ये तो क्यों खर्चा करता है इतना? नहीं, वो गिनने में
नहीं आता।
वो खर्चा गिनने में नहीं, भाई बहुत कमाता है, खर्च करने दो उसको, थोड़ा खर्च करता है तो करने दो उसको। हाँ, ऐसा कहेगा क्या? नुकसान करता है ऐसा बोलेगा उसको? कई लड़का हमारे घर में नुकसान कर दिया 10 हजार का। वो बात नहीं, उधर तो दृष्टांत है, वो एक पॉइंट से एक अंश से लागू पड़ता है, पूरा नहीं लागू पड़ता है। कहीं भी कुतर्क नहीं करना है क्या? जो बात जिस न्याय को ग्रहण करने के लिए चलती है उसमें कुतर्क करने से क्या फायदा है? ज्ञानी के चारित्र मोह के परिणाम को मुख्य करेगा तो ये मुख्य करने का जो ज्ञान है उस ज्ञान की प्रवृत्ति को स्वच्छंद प्रवृत्ति कहने में आई है। इसमें लिया है प्रयोजन सिद्धि में, स्वच्छंद के मुद्दे में वो बात लिया है कि ज्ञानी के चारित्र मोह के परिणाम की मुख्यता करना, ये अज्ञानी मुमुक्षु का स्वच्छंद है, ऐसा लिया है। वो जो भी करता है वो सही करता है क्या? 272 नंबर का पत्र है कि ज्ञानी के सभी आचरण वंदनीय होते हैं। क्या लिखा है? तो ज्ञानी व्यापार करे उसको भी वंदन करे, हाँ उसको भी वंदन करे, ऐसी बात है। ऐसे चारित्र मोह के झंझावात में भी अपना पुरुषार्थ, अपनी श्रद्धा, अपना सम्यक ज्ञान, उसका त्याग नहीं होता है, ये अधिक मंदन के योग्य परिस्थिति है।
योगी ले आला भोगी, योग से आला भोगी
में। ऐसे ज्यादा निर्जरा करते हैं, उस वक्त भी निर्जरा करते हैं, ऐसी बात है। सब ख्याल में था, सब ख्याल में था। बहुत विचक्षण पुरुष थे वो, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े महात्मा थे वो। रामचंद्र जी बहुत बड़े महात्मा थे। मामूली व्यक्ति नहीं थे। हाँ, पुरुषोत्तम तो लोग की कितनी विचक्षणता थे, लोगों ने ऐसा, समाज ने ऐसा कि ये तो पुरुषोत्तम पुरुष है, हमारे समाज के एक उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुषोत्तम पुरुष है। इतना उसका ये बात हो गई थी कि आज हजारों साल के बाद वही बात चल रही है, ऐसी बात चल रही है। देखो लोग का बहाना था, फिर भी लोग सुनना नहीं थे। क्या लोक का बाना था, फिर भी लोक संज्ञा नहीं थी। देखो क्या बात है, इतना अनुचित लगे ऊपरी दृष्टि से देखे तो उतना अनुचित लगे। ये धर्मात्मा है और अपनी पत्नी भी है और उतना उसके प्रति स्नेह है, फिर इतना कठोर कदम उठाया, ऐसा लगे। वो जिस काल में जो विकल्प आ गया सो आ गया, जाओ वैसा भी बनता है, फिर भी वो अपना श्रद्धा ज्ञान पुरुषार्थ से च्युत होते नहीं है, इसलिए उनको इसका आश्रय बंद नहीं है, जाओ। अगर इसका आश्रय बंद होता तो उस भव में मुक्ति में नहीं जाते। हाँ, वो ना सबूत है, उसका ये सबूत है। अगर भरत चक्रवर्ती को 6 खंड का आश्रय बंद होता तो वो मुक्ति में नहीं जाते, एक नहीं गए।
सोबाने जी ने कहा है इस नानी को कैसा राग आ जाएगा
ना, कोई उसका ठिकाना नहीं है। राग से नाप करने को जाएगा तो
नानी नहीं पहचान जाएगा,
नान को नहीं पहचानेगा, ऐसे बात है।
जंगल
नहीं, कोई कोई राग का स्वामित्व ही नहीं। आ गया सो आ गया, उस काल में ऐसे आने लायक था तो आ गया, मैं तो ज्ञाता था, ज्ञाता ही था, उतनी बात है। हाँ, तो उसका स्वामित्व उसको नहीं है। वैरागी क्यों है, रस क्यों ना आता, अपना है तो रस आता है, पराया में किसी को रस नहीं आता है, ये पराया हो गया सब।
परिणाम परिणम गया, मैं वही का वही रह गया।
हाँ, परिणाम परिणम गया, मैं ध्रुव अपरिणामी ऐसा का ऐसा रहता हूँ हमेशा।
सीता जी एक नानी ने अवगणना करी थी, इसलिए सजा दी हमने, हमने ऊपर ये आरोप आया हुआ।
कोई कर्म का उदय, फिर भी वो उदय आया उसको अपना नहीं जानता। सीता जी भी उस उदय को अपना
नहीं जानता,
नहीं जानता। शुरू में तो विलाप करते हैं, घोर जंगल में अकेला छोड़ दिया तो विलाप भी किया, लेकिन विलाप को कभी स्वामी नहीं और उदय का भी स्वामी नहीं है। फिर वाल्मीकि के आश्रम में चले गए। वो रागादि को रोग समान जानकर प्रवर्तता है और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें काटता जाता है। सामित्व तो नहीं है, अल्प राग रहा उसको रोग जानकर प्रवर्तता है। रोग को कौन पोषण पोषण देगा,
नहीं देगा।
और अपनी शक्ति के अनुसार जितना पुरुषार्थ है उसके अनुसार उसको मिटाता जाता है। वो प्रयत्न, उसका प्रयास पुरुषार्थ निरंतर चलता है, ऐसा कहते हैं। वो नाविक जैसे तूफान में पुरुषार्थ करता है वैसा उसका पुरुषार्थ चलता है। इसलिए ज्ञानी के जो रागादि होता है वह विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसा ही है, होते हुए भी
नहीं जैसा है,
नहीं वत है, नहीं वत है, वो गिनने में आता नहीं है। लाखों के कमाई करने वाले को खर्चा के बारे में टोकते कोई नहीं, टोकते हैं क्या कि ये नहीं बनता। वह आगामी सामान्य संसार का बंद नहीं करता, ऐसा जो राग है वो संसार का बंद नहीं करता, मात्र अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंद करता है, और ऐसे अल्प बंद को यहाँ नहीं गिना है। बहुत स्पष्टीकरण दिया है, यहाँ इसकी गिनती करने में नहीं आती है, क्योंकि इसकी गिनती करने से इसका जो अंतरंग स्वरूप है वो दिखाने का जो यहाँ अभिप्राय है वो छूट जाएगा, उस पर ध्यान नहीं जाएगा, ऐसा बनेगा कि उस पर ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ इस बात को नहीं लेना है। अगर इस बात को लेंगे तो ये बात छूट जाएगी, इसको गिनने को जाएंगे तो वो बात छूट जाएगी।
श्रीमद जी ने दशा विचारी,
स्पष्ट बात है, बहुत दृष्टांत मिलते हैं। इस प्रकार ज्ञानी के आश्रम न होने से बंध भी नहीं होता। हाँ बहुत बहुत खुला है। બરાબર લીધો છે એટલો ઓલામાં એટલું કાપ્યું છે। એક સો અડસઠ લ્યો ઉસકા ઓર ભી એક જ્યાદા બાત લેતે હૈં। અબ રાગાદિ કે સાથ અમિશ્રિત ભાવ કી ઉત્પત્તિ બતલાતે હૈં ક્યા कि ज्ञानी है उसको रागादि के साथ एकत्व नहीं होता, मिश्रितपना नहीं होता, अपने आप को वो उसमें शामिल नहीं करता, इन्वॉल्व नहीं करते। वो कहते हैं किस तरह से अज्ञानी को तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी होते हैं, ज्ञानी के होते ही नहीं। अच्छा तो दूसरा पक्ष ले लिया है, गाथा तो ज्ञानी की है लेकिन अज्ञानी का फल परिणमन स्पष्ट किया है। 168 पक्के फलम ही पढ़िए जहाँ न फलम बजे पुणो विंटे जीव स कम भावे पढ़िए न पुणोदयम वेदी। दृष्टि की बात चलती है और स्वरूप दिखाते हैं सम्यक दृष्टि को। जैसे पके हुए फल के गिरने पर फिर से वह फल उस डंठल के साथ नहीं जुड़ता। आपने ने डीटीओ कहिए से पाकेलू फल खरी जाए वृक्ष पर से गिर जाता है तो पछी डीटिया साथे चोटे नहीं। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता जगत में, है किसको कोई लगा देगा। वो पक गया अपने भार से वो गिर गया तो उसको वो गिरने का ऐसे ही एक कुदरती परिस्थिति पैदा हो गई, उसको वहां रख सकते नहीं। ऐसे ज्ञानी को ये जो राग की अयोग्यता थी वो खिर गई, आकर के खिर गई, ऐसा कहते हैं। अब नहीं हो सकती है, वो राग को चौटते नहीं, राग उसको चौटता नहीं है।
जोड़ना चाहे तो नहीं हो सकता,
नहीं जोड़ना चाहे तो भी जोड़ सकते हैं नहीं है आत्मा को उसमें। जैसे आपने जान लिया कि ये आदमी मेरे पिता नहीं है, शक्ल थोड़ी मिलती जुलती है लेकिन है
नहीं,
नहीं। फिर कोई कह कोशिश तो करो,
नहीं
हो सकता है क्या ऐसा? पिता ने कभी देखा कि ये लड़का मेरा नहीं है, शक्ल थोड़ी मिलती जुलती तो क्या नहीं तुम प्यार करो उसको, उसको अपना लड़का बनाओ, कोई बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि वो पराया है, अपना नहीं है, ऐसा जानने में आया वो ज्ञान कहाँ चला जाएगा? वो ज्ञान कहाँ चला जाएगा? वो ज्ञान कहीं जा सकता नहीं है, ऐसी बात है। अब तो एक दूसरा ही दृष्टांत ले लिया, समय सार में तो आचार्य महाराज ने बहुत बात लिखा है। उसी प्रकार जीव के कर्म भाव खिर जाने पर वो फिर से उत्पन्न नहीं होता, अर्थात वह कर्म भाव जीव के साथ पुनः नहीं जुड़ता। देखो पका हुआ फल हो गया, पक गया वो, पूर्व में थोड़ा संस्कार लिया था, कर्म बंधा था, उदय आया खिर गया, राग हुआ वो भी खिर गया, कर्म तो खिर गया लेकिन राग तो किया ने। क्या क्या हम लोग देखते हैं कि कर्म तो उदय आके खिर गया लेकिन राग तो ज्ञानी ने किया कि नहीं किया? कि नहीं, राग ज्ञानी को खिर गया है। खिरता रहता है हर काल में, जो परिपक्व फल हो जाते हैं ऐसे जैसे गिरते जाते हैं वैसे उनके राग भी गिरते जाते हैं, खिरते जाते हैं, शुद्धि होती जाती है, ऐसी बात है।
अभी एक प्रश्न उठा है कि ऐसा भी पढ़ने में आता हमारे कि संभय दर्शन छूट भी जाता है तो ये क्या?
हाँ, छूट जाता है तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, छूट जाता है तो एकत्व हो जाता है, सुख बुद्धि हो जाती है, पुण्य की रुचि होती है, पुण्य फल और अनुकूलता की भी रुचि हो जाती है, तो ये छूट जाता है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो जानने का विषय है, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो ऐसे लें कि हम सम्यक दर्शन का पा करके हमारा तो छूटने वाला कभी नहीं है, ऐसा ऐसा हमारा तो सम्यक दर्शन ऐसा होगा।
अपना जोर तो ऐसा रखना है।
वो तो थोड़ा सतर्क रहने की बात है, क्या वो बात होती है, और होती है तो दिखाई भी है, तो दिखाई क्यों है कि कोई सतर्क रह जाए, जागृत रह जाए, कहीं वो गफलत में रहे नहीं, उसलिए वो बात है, उतनी बात है। हाँ, वो फिर पीछे पड़ने पूर्णता लेकर के रहेगा, पीछे पड़ने वाला नहीं है, ऐसी बात है। ठीक है, जैसे पका हुआ फल एक बार डंठल से गिर जाने पर भी फिर वह उसके साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता, छुटी गयी पछी यहाँ कहीं छोटे बटे नहीं। वो क्रमबद्ध में भी वो बात गुरुदेव ने लिया है कि हर पर्याय राग की हो, किसी भी द्वेष की हो, कुछ भी हो, अपने परिपक्व काल पकाल में उत्पन्न होती है। कब आती है, कब उत्पन्न होती है? अपने परिपक्व काल में हर पर्याय की उत्पत्ति है। किसके साथ तुझे राग करना है, किस पर्याय के साथ तुझे द्वेष करना है, जब ये अपने परिपक्व समय में उत्पन्न हुई है, उसको तो एक समय भी आगे पीछे नहीं कर सकता है, अपनी पर्याय को भी, दूसरे की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर राग द्वेष करने का कोई जगह रहता नहीं है, खत्म हो गया। हाँ, क्रमबद्ध पर्याय ज्ञानी ही समझता है, और जो समझता है वो ज्ञानी हो जाता है। इसलिए तो कितने प्रवचन किए हैं, पहले भाग में आया कि नहीं प्रवचन, नवनीत में 7-8 प्रवचन है, 8 प्रवचन है। ठीक उसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव जीव भाव से एक बार अलग होने पर फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता, ये योग्यता खिर गई। क्या बोले, ज्ञानी की भी ऐसी योग्यता खिर गई, वो अधिक शुद्धि को प्राप्त हुई इस वक्त, अब ये राग फिर से चौंटने वाला नहीं है, ऐसी बात लिया। अज्ञानी को तो आज जैसे कोई दर्द हुआ शरीर में, अशाता से दर्द होता है ना, तो फिर वो डॉक्टर और दवाई के लिए धमाधम करता है, अच्छे से अच्छी दवा खिलाओ, अच्छे से अच्छा डॉक्टर लाओ और मुझे मेरा रोग को मिटा दो। तो क्या होता है उसको कि नया रोग ऐसा उत्पन्न हो जाए, इससे भी बढ़िया हो जाए, ऐसा नया अशाता कर्म को वो बांधता है, और दुखी होगा, वर्तमान में दुखी है और वर्तमान भविष्य में भी दुखी होगा। ज्ञानी को ऐसा नहीं है, वर्तमान में भी भिन्न रहे पर आगे में तो कोई नया आने वाला है ही नहीं, जाओ खत्म, बात पूरी हो गई। वो तो जो भी कर्जा था वो चुका दिया, क्या उदय आया वो कर्जा चुका दिया, खाता नील हो गया, खत्म, अब कोई लेना देना नहीं रहता, ऐसी बात है। इस प्रकार रागादि के साथ न मिला हुआ ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है, क्या मिश्रित भाव की उत्पत्ति बताई ने, क्यों ऐसा हुआ, ये राग फिर से नहीं चौंटा इसका क्या कारण, कर्म फिर से नहीं बंधा इसका क्या कारण? के रागादि के साथ न मिला हुआ एवं ज्ञानमय रागादि असंकीर्णो भाव संभवती, संभव मैंने उत्पन्न होना, भाव मैंने होना, संभवती मैंने अच्छे प्रकार से होना। कैसा के ज्ञानमय, कैसा ज्ञानमय के रागादि असंकीर्णो, रागादि के साथ उसका संबंध जिसका नहीं है, ऐसा ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है। जिसको प्रत्यक्ष ज्ञानमय दशा, ज्ञानमय स्वरूप के साथ परिणमन दशा वर्तती है, वो राग का साथ कैसे संबंध करेगा? वो राग के साथ संबंध करने वाला नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानमय में वो विरुद्ध जाती है, ज्ञान से वो विरुद्ध जाती है, रोग रूप जानते हैं, उसके साथ वो अपनत्व करते नहीं है। भावार्थ, यदि ज्ञान एक बार अप्रतिपाती अप्रतिपाती भाव से, अप्रति माने पड़े नहीं, ऐसे गिरे नहीं, ऐसे भाव से ले लिया, काउंस में ब्रैकेट में लिया कि यहाँ तो च्युत होने वाले की बात लेते ही नहीं, ऐसी बात यहाँ तो करते ही नहीं। यदि ज्ञान एक बार रागादिक से भिन्न परिणमित हो तो वह पुनः कभी भी रागादि के साथ मिश्रित नहीं होता, भिन्न हो गया सो हो गया, पर्वत में दरार पड़ गई, फिर उसको कोई मिलाने वाला कोई होता नहीं है। कितनी मिट्टी डाले तो ये दरार ठीक हो जाए, ये हो सकती नहीं है, मिट्टी मिट्टी इतनी मिलती नहीं, कभी भी रागादि के साथ मिश्रित नहीं होता। इस प्रकार उत्पन्न हुआ और रागादि के साथ न मिला हुआ ज्ञानमय भाव, इस प्रकार उत्पन्न हुआ ज्ञानमय भाव के जो रागादि के से भिन्न रहता है, वो सदा ज्ञानमय भाव ही रहता है, अनुभव में ज्ञानमय पना ही अनुभव में आता रहता है। मैं ज्ञान हूं, मैं ये खाना खाया, इसका खुराक मेरे में कैसे आ सकता है? क्या ज्ञान खा सकता है
नहीं।
अनाज को, अन्न को ज्ञान खा सकता है क्या?
नहीं खा सकता।
ज्ञान कपड़ा पहन सकता है क्या?
नहीं। स्पर्श भी नहीं करता, स्पर्श गुण नहीं,
कुछ हो सकता नहीं है।
कौन खाता?
पुद्गल, पुद्गल खानो, पुद्गल पीनो, पुद्गल होती खाए क्या? नहीं, कोई खाता बाता नहीं है। एक जगह से थाली में जो परमाणु थे वो पेट में आए, क्या हुआ? जो थाली में था वो पेट में आए, किसी ने खाया वाया नहीं,
उसका नाश भी नहीं होता है,
उसका कोई अभाव होता है क्या परमाणु का? फिर उसका बनेगा सप्त धातु में, तो परमाणु पर्यायांतर होगा, खाया वाया क्या है?
परिणमन चल रहा है,
परिणमन का चक्कर साइकिल चलती है, हमने खाया। देखो वो जो विष आदि होती है वो खाद में जाती है, इसका खाद बनता है और खाद फिर अनाज बनाता है, क्या परमाणु में परिणमन करता है और क्या है उसमें?
हाँ,
ऐसी बात है, परमाणु बदलता है, जीव में कोई परमाणु का प्रवेश होता है ऐसा बनता
नहीं।
नहीं कहते हैं, देखो अन्न कहते हैं, और वही 6 घंटे के बाद उसको विष्टा कहते हैं। बात ऐसी है, आश्चर्य क्या, मुंह उड़ जाए ऐसी बात है, फिर वो खाने पीने का मुंह खत्म हो जाए, नहीं वो ठीक है, वो सब कचरा ही है जो बनता है, सब हड्डी भी कचरा है, खून भी कचरा है, मांस भी कचरा है, और विष्ठा भी कचरा ही कचरा है, सब जीव के लिए तो सब कचरा ही। हाँ, रागादि को भी मल बताया है, राग भी मल है, वो भाव मल है, वो द्रव्य मल है, और ये भाव मल है, और क्या है? ठीक बात है, उसको मल जाने तो मोह उड़ जाए, उसका मल जाने तो मोह रवे
नहीं।
इसलिए तो बनारसी दास नहीं है, वस्तु कहते वस्तु विचारे ते विरला जग जो मेरे, वो किसने लिखा, आनंद गंजी का है, देवचंद जी का है, आनंद गंजी का, वस्तु कहते वस्तु विचारे ते विरला जग जो मेरे, भ्रंगी लीका ने चटकावे ते भ्रंगी जग जो मेरे, आनंद गंजी नुछे है वो भ्रंगी, मैंने वो भ्रमरी होती है ना, वो ईयर दो इंद्री होती है, उसको ये डंख मारती है और उसको भी पाख आ जाती है, वो ते इंद्री हो जाती है, ईयर जो है वो भ्रमरी बन जाती है। ऐसे जो गुरु है वो शिष्य को
चटका मारते हैं,
बराबर ज्ञान ज्ञान का लगाते हैं तो ज्ञानी हो जाता है। क्या शिष्य अज्ञानी मिट करके ज्ञानी हो जाता कि नहीं हो जाता, ऐसा ऐसी बात है। इस प्रकार उत्पन्न हुआ ज्ञानमय भाव सदा रहता है कि जो रागादि के साथ मिलता नहीं है। फिर जीव अस्थिरता रूप से रागादि में युक्त तो होता है, कौन सम्यक दृष्टि, थोड़ी अस्थिरता है उसको थोड़ी अस्थिरता गिनी है, उसको बार कसाई जीवनते इसलिए ज्यादा है ऐसा नहीं गिना है, चार गई बार तो रह गई, ये मूर्खता है। वो निश्चय दृष्टि से युक्तता है ही नहीं, रागादि से युक्त होता है वो युक्तता है ही नहीं, जुड़ानी नहीं है, भिन्न रहता है। और उसके जो अल्प बंध होता है, क्योंकि राग भी अल्प लिया तो बंध भी अल्प लिया, अल्प बंध होता है, देखो जयचंद जी ने लिया है अल्प बंध, अल्प शब्द लिखा है कि नहीं लिखा है, वहां फिर अल्प बंध होता है, वो भी निश्चित दृष्टि से बंध है ही नहीं, क्योंकि अवध स्पष्ट रूप से परिणमन निरंतर वर्तता ही रहता है। अवध स्पष्ट मैंने स्पर्श भी नहीं करता और बंधन भी नहीं होता, बद्ध मैंने बंधन होना, स्पर्श मैंने स्पर्श होना, तो न राग से स्पर्श करता है न कर्म से बंध करता है, ऐसा ज्ञानी को परिणमन निरंतर वर्तता ही रहता है। तथा उसे मिथ्यात्व के साथ रहने वाली प्रकृतियों का ये इधर लिया, बंद नहीं होता, मिथ्यात्व के साथ रहने वाली सात प्रकृति है, तो मिथ्यात्व एक और दो दर्शनमोह की और चार अनंतानुबंधी की, चारित्रमोह की, उस प्रकृतियों का बंद, सात प्रकृतियों का बंद उसको नहीं होता, और अन्य प्रकृतियां सामान्य संसार का कारण नहीं है। दूसरे जो बंध है वो दीर्घ संसार का कारण नहीं है, सामान्य मैंने दीर्घ चले ऐसा संसार का कारण नहीं है, वो सब जैसे फल गिर जाएगा वैसे वो आकर के गिर जाता है, आकर के गिर जाता है। मूल से कटे हुए वृक्ष के हरे पत्तों के समान वे प्रकृतियां शीघ्र ही सूखने योग्य है, वो सूख जाएगी सब, मूल कट गया पत्ता हरा है
सूख जाएगा,
उसको हरा नहीं देखते हैं, वो तो अभी थोड़ी देर में सूखने वाले है ही, उसको हरा रखना चाहे तो भी नहीं रह सकता, हरा रखना चाहे तो हरा नहीं रह सकता पत्ता, ऐसे सम्यक दृष्टि होने के बाद वो राग को रख सकता नहीं है, रखना चाहे तो, वो तो तर्क है, रखना चाहता नहीं कभी, लेकिन कृपालु देव ने सम्यक दर्शन को वाणी दिया तो सम्यक दर्शन बोलने लगा, सम्यक दर्शन को वाणी दे दिया तो बोलने लगा कि अरे जी एक बार अगर तू मुझे ग्रहण कर लेगा तो फिर तुझे संसार में रहना होगा तो भी तू रह पाएगा नहीं, मैं तुम्हें खींच करके मोक्ष में ले जाऊंगा, ऐसी बात है, योग्यता बदल जाती है, पूरे जीव द्रव्य की योग्यता बदल जाती है, समीर दर्शन से द्रव्य पलट जाता है, ऐसा हो जाता है। एक दफे गुरुदेव जो है बुखार आया था, इतना बुखार था 3-4 डिग्री, फिर वो बात करते थे, किसी को लगे नहीं कि बुखार में बैठे बैठे बात करते हैं 3-4 डिग्री में, तो अपने आप में बोले आपको कुछ लगता नहीं है 3-4 डिग्री, थर्मोमीटर बोलता है कि 3-4 डिग्री का बुखार है और आप तो जैसे बात करते हो जैसे कुछ है ही नहीं, तो क्या समझ में नहीं ये द्रव्य कैसा हो गया है क्या बोले कि द्रव्य कोई ऐसा हो गया है कि समझ में नहीं आता क्या, लगता ही नहीं कुछ ऐसा द्रव्य हो गया है कि कुछ हमको तो लगता ही नहीं कि हम बीमार हैं, ऐसी बात है। ब्लड कैंसर का बात आए तब ऐसे बोले थे, आप लोग कहो तो कहो हमको तो कुछ नहीं दिखता है, हम तो जैसे हैं वैसे हैं, हमको कोई असर नहीं होती है कि ये हो गया वो हो गया, हमको हुआ ही नहीं है, जो हुआ वो पड़ोसी को हुआ है, हमको कुछ
नहीं हुआ
है, शरीर तो पड़ोसी है, क्या है
पड़ोसी,
ये पड़ोसी है, पड़ोसी को कुछ होता है हमें क्या खबर, अंतर पूछ लो कैसे भाई, कोई दवा बवा लानी है ला दूं मैं, क्या कोई सेवा करनी है, बात खत्म, फिर लेना देना कुछ नहीं,
व्यवहार कराते हैं
बस, व्यवहार है उतना।
अच्छा
3-4 डिग्री में बहुत प्रवचन दिए हैं, 3-4 डिग्री का बुखार हो गुरुदेव प्रवचन देवे जैसा नॉर्मल पोजीशन में देवे उतना, कभी तो उनको पता ही नहीं चलता था, भाई प्रवचन देने के बाद अपने कमर में जावे तो बोले कि जरा देखो तो ये थोड़ा उष्ण लगता है क्या, थोड़ा ये उष्ण लगता है देखो तो क्या है, तो फिर थर्मोमीटर लगाते तो बोले 103-104 तो बुखार है, ठीक है चलो जो होगा सो होगा। जैसे निश्चय करी यह प्रकट है, जो वीटसों पका फला एक बार खड़ी पड़िया सो वह फल फेरी वीटसों संबंध रूप नहीं हुए हैं, जैसे कर्म का अवधि को निपजा जो जीव का भाव सो एक बार जीव भाव सो भिन्न भया, एक बार जीव भाव सो भिन्न भया, फिर जीव भाव को प्राप्त
नहीं होता,
अपनत्व नहीं होता है, ऐसा ज्ञानमय भाव रागादि करी असंकीर्ण संभव है, ये तो टीका है, कर्म की निद्रा भय पीछे वह कर्म फेरी उदय नहीं आवे, तब ज्ञानमय भाव रहा, ऐसे जब जीव का मिथ्यात्व कर्म अनंतानुमंदे सहित सत्वों में से क्षय हो जाए तब फिर उदय आवे नहीं, तब ज्ञानी भया संता फिर कर्म का करता नहीं, वहां वो लिया कि अनंतानुमंदे सात प्रकृति खिर गई नहीं तो उसका तो उदय नहीं आएगा, क्योंकि वो तो परिपक्व होकर के क्षय हो गया, मिथ्यात् की लार लगी प्रकृति तो बंधे नहीं और अन्य प्रकृति सामान्य संसार का कारण नहीं, मूलते कटे वृक्ष के हरे पानवत है ते हैं ते शीघ्र सूखने योग्य है, ऐसे ज्ञानी का रागा दिखते नहीं मिला ऐसा ज्ञानमय भाव संभव है, चारित्रों का उदय का राग अज्ञानमय न गिणीय है, जाते समीप दृष्टि के ताका स्वामीपणा नहीं है, अब इस अर्थ का कलश रूप क्या कहेंगे बाद में, वो कलश आता है।
जो आदि देव से निमंत्रण भगवान जय हो परम कृपा।